कृष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्य चैतन्य चरितामृत के सत्र 27 में। हम मध्यलीला प्रारंभ किए हुए हैं और पहले दो अध्याय मध्यलीला के संपूर्ण शेष लीला इनका सारांश बताया गया है। शेष लीला आप सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु 48 साल इस धरातल पर थे, तो उसमें से पहले संन्यास के पहले 24 साल उसे आदि लीला कहते हैं और संन्यास के बाद वाले 24 साल इसे शेष लीला कहते हैं। और शेष लीला के भी दो विभाग होते हैं, पहले 6 साल मध्य लीला और बाद वाले 18 साल अंत्य लीला। तो पहले दो अध्याय जो है वो सारांश रूप में बताए गए हैं सारे शेष लीला के। और उसमें भी जो पहला अध्याय है मध्य लीला का, उसमें पहले अध्याय में मध्य लीला का सारांश और जो अंत्य लीला है उसके पहले 6 साल का सारांश। अंत्य लीला 24 साल की है टोटल कुल मिला के, उसमें पहले 6 साल जब चले जाते हैं तब बचते हैं 18 साल। 18 में से भी जो पहले 6 साल है उनका सारांश मध्य लीला के पहले अध्याय में है और जो केवल आखिरी 12 अध्याय है अंत्य लीला के उनका सारांश जो है वो मध्य लीला के दूसरे अध्याय में है। और संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु तीसरे अध्याय में अद्वैताचार्य के घर पे, चौथे अध्याय में गोपाल जी की प्रतिष्ठा, माधवेंद्रपुरी इनकी भक्ति का गुणगान और खीरचोर गोपीनाथ इनका वृत्तांत, अध्याय 5 साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत, अध्याय 6 महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में पहुंचना और सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार, अध्याय 7 महाप्रभु का दक्षिण भारत के लिए प्रारंभ करना और वासुदेव इनका उद्धार, अध्याय 8 रामानंद राय संवाद, अध्याय 9 संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण और कई सारे लोगों का उद्धार, अध्याय 10 महाप्रभु का पुरी में वापस लौटना और सारे भक्तों का वहां पर मिलना, अध्याय 11 बंगाल के भी भक्त वहां पर आना महाप्रभु से मिलना और बेड़ा संकीर्तन पास टाइम्स, अध्याय 12 गुंडीचा मंदिर मार्जन, अध्याय 13 रथ यात्रा, अध्याय 14 हेरा पंचमी महोत्सव, अध्याय 15 बंगाल के भक्तों का महाप्रभु के द्वारा गुणगान, सारे भक्तों का पुनः बंगाल लौट जाना, महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे प्रसाद लेना और अमोघ इनका उद्धार, अध्याय 16 महाप्रभु का वृंदावन के लिए प्रयास करना दूसरा लेकिन वो असफल हो जाना, कनाई नाटशाला से महाप्रभु पुनः लौट जाना, अध्याय 17 महाप्रभु झारखंड रस्ते से जंगल से होते हुए वृंदावन गमन, अध्याय 18 वृंदावन भ्रमण और वृंदावन से फिर पुनः पुरी की तरफ निकलना, अध्याय 19 महाप्रभु का प्रयाग में पहुंचना, रूप गोस्वामी से मिलना और रूप गोस्वामी को 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा प्रदान करना, अध्याय 20 महाप्रभु वहां से वाराणसी के लिए निकलना, सनातन गोस्वामी का वाराणसी में मिलना और उनको संबंध ज्ञान की शिक्षा देना, अध्याय 21 ये भी संबंध ज्ञान है लेकिन इसमें केवल कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य इनका वर्णन है, अध्याय 22 अभिधेय ज्ञान, अध्याय 23 प्रयोजन ज्ञान और अध्याय 24 सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक के 18 अर्थ बताए थे ऐसा हमने सुना है, तो मैं सुनना चाहता हूं और महाप्रभु ने किस प्रकार से 61 अर्थ आत्माराम श्लोक के बनाए वो है अध्याय 24 में, और अध्याय 23 हमने कल दोनों अध्याय लिए थे आपको यदि याद है, 23 और 24। तो 23 में जो है वो प्रयोजन बताया गया है, तो किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है कृष्ण प्रेम धन, और उसके लिए जो है हमने महाप्रभु ने सर्वप्रथम भाव स्तर और प्रेम स्तर इन सबके लक्षण बताए। भाव स्तर पे जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या है, प्रेम स्तर पर जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या है, उस स्तर तक कैसे जाया जाता है, उस स्तर में क्या 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 करते हैं, और जो है वो श्रद्धा के भी बारे में महाप्रभु ने बनाया, और हमारे सर्वश्रेष्ठ हीरो और हीरोइन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ये हमारे हीरो है, नायक शिरोमणि, नायिका शिरोमणि राधिका ठाकुरानी, तो ये दोनों। फिर भगवान कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन आता है, उसमें भी पहले 50 गुण बद्ध जीव में भी पाए जा सकते हैं कुछ मात्रा में, उसके और 5 जुड़ जाते हैं तो वो 55 गुण शिवजी तक के देवताओं में पाए जाते हैं, और उसके पश्चात और 5 जोड़ दिए जाए तो 60 गुण वो जो है वो भगवान के विभिन्न अवतार नारायण आदि में पाए जाते हैं, और जो केवल 4 गुण है वो विशेष भगवान श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं, उनकी लीला माधुरी, उनके पार्षद यानी परिकर माधुरी, वेणु माधुरी और उनकी रूप माधुरी, तो ये 4 विशेष भगवान श्री कृष्ण के जुड़े हुए गुण है। और श्रीमती राधारानी के 25 गुणों का वर्णन महाप्रभु ने कराया था, और इस प्रकार से जो है वो रूप सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। 24वें अध्याय में आत्माराम श्लोक की 61 अर्थ अलग अलग प्रकाशित किए, और श्रीमद् भागवत की महिमा बताई, और उसके पश्चात सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था कि वैष्णव आचार के बारे में आपने मुझे लिखने के लिए कहा है, उसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए सूत्र रूप में। तो महाप्रभु ने सूत्र रूप में उन्हें जो है वो बताया था कि किस प्रकार से एक वैष्णव का वर्तन होना चाहिए, वर्तनुक होना चाहिए, मंदिर में किस प्रकार से जाना चाहिए, महोत्सव कैसे मनाते हैं, एकादशी कैसे करना चाहिए, व्रत तिलक कैसे लगाते हैं, स्नान कैसे करते हैं, दांत कैसे घसना चाहिए, सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है। तो वो सनातन गोस्वामी आगे चल के अपने ग्रंथों में लिखेंगे। तो आज हम अध्याय 25 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है महाप्रभु का वाराणसी में स्थित लोगों का उद्धार करना और वहां से पुनः जगन्नाथपुरी के लिए लौट जाना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मत महाप्रभु दुई मास पर्यंत सिखाईला तारे भक्ति सिद्धांतेर अंत। इस प्रकार से महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं प्रदान की वो 2 महीने तक प्रदान की, 2 मास पर्यंत सिखाईला सिद्धांतेर अंत, सारे सिद्धांत समझाए 2 महीने तक। वाराणसी में महाप्रभु है, सनातन गोस्वामी भी वाराणसी में 2 महीने तक थे। रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी कहां पर याद है आपको, प्रयाग में दी थी, और वो दशाश्वमेध घाट पर दी थी और 10 दिन के लिए दी थी, और गोस्वामी को महाप्रभु वाराणसी में शिक्षा प्रदान कर और मेरा आमंत्रण कृपया स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पे सारे जो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य सब मायावादी लोग वहां पर रहा करते थे, इसलिए महाप्रभु कभी किसी का आमंत्रण वहां पर स्वीकार नहीं किए, और तपन मिश्रा ने भी उनसे विनती की थी कि आप कहीं पर मत जाइए, मेरे यहां पर ही आपको प्रसाद पाना है। तो आपको याद होगा प्रकाशानंद सरस्वती और उनके कुछ शिष्य वो महाप्रभु की आलोचना करते थे। जब हमने 17वें अध्याय में देखा मध्य लीला के 17वां अध्याय आपको याद है, महाप्रभु का वृंदावन के लिए झारखंड जंगल से जाना, तो जब झारखंड जंगल से जब महाप्रभु गए थे उसके पश्चात महाप्रभु वाराणसी 1 दिन के लिए रुके थे, और वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती और उनका दूसरे शिष्य और ये जो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण था उसके साथ प्रकाशानंद सरस्वती इनकी बातचीत, इसका विस्तार से चर्चा हमने सुना था कि किस प्रकार से वो अवहेलना करते हैं, मैं तो जानता हूं ये ढोंगी सन्यासी है, ऐसे इस प्रकार से अवहेलना की थी। तो अभी जब महाप्रभु 2 महीने के पश्चात प्रकाशानंद सरस्वती से मिलते हैं और उनका उद्धार करते हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो इसका विस्तार से वर्णन पहले ही कर चुका हूं, ग्रंथ ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं विस्तार से नहीं लिखूंगा। आपको याद है प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार महाप्रभु ने कैसे किया था, कहाँ पे किया था। आप यदि आदि लीला को अच्छे से सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, तो आदि लीला का अध्याय 7 जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार आता है, अध्याय 7 का शीर्षक क्या है अध्याय का, पंच तत्व निरूपण। तो कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं, तहा यही छे कैला प्रभु सन्यासी र निस्तार पंच तत्व आख्यान तहा करिया छीन विस्तार। मैंने विस्तार पूर्वक पंच तत्व आख्यान जब किया था उस समय मैंने बताया है, और आपने सुना भी होगा किस प्रकार से महाप्रभु वो दिव्य प्रकाश प्रकाशित करते हैं और जहां पर पैर धोते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती फिर सेवा करके महाप्रभु को अंदर लेके जाता है, और वो कहते हैं कि क्यों आप जो है वो ऐसे नर्तन कीर्तन करते रहते हो, आपको वेदांत पठन करना चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे अज्ञ मानी, मुझे मूर्ख माना और मुझे कृष्ण नाम दिया हुआ है। कीबा मंत्र की दिला गोसाई कीबा तारा बल जपीते जपीते मंत्र होइला पागल। इस प्रकार से महाप्रभु सारा वृत्तांत सुनाते, ये सब वृत्तांत कविराज गोस्वामी कहते कि मैंने विस्तार से सुना दिया है। तो उसको हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, कट पेस्ट यहाँ पे होगा वो। तो वहां पे केवल पंचतत्व कितने कृपालु है कि ऐसे ऐसे बड़े सन्यासियों तक उनका उद्धार हुआ, वो बताने के लिए कविराज गोस्वामी वहां पे वो वृत्तांत सुनाए हैं। तो वो वृत्तांत वैसे के वैसा यहाँ पे आएगा। और इसके पश्चात क्या हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती का वहां पे उद्धार हो गया, वो समझ गया कि अभी महाप्रभु जो वहीं पर उसका उद्धार हो गया था, कि महाप्रभु ने उसे बहुत नम्रता पूर्वक और तर्क से जो है वो उन्हें संतुष्ट किया था, सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर दिए थे। और फिर ये जब वार्ता सारे गांव में फैलने लगी कि इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती उनके सारे हजारों शिष्य वो अभी वैष्णव बन गए, सारे लोगों के बीच में चर्चा होने लगी, प्रकाशानंद सरस्वती इतने सारे सन्यासी सब वैष्णव हो रहे हैं, कौन सन्यासी आया हुआ है, चलो मिलने चलते हैं। सारे लोग दर्शन के लिए महाप्रभु के यहाँ पे जो आया करते थे वहां पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, और सब लोग नर्तन कीर्तन बहुत अच्छे से उनका चलता था, और जो मायावती सन्यासी वो सब एक जगह मिलते थे और वो कथा करते थे। अभी कौन सी कथा होगी उनकी, तो एक बार सारे मायावतियों का गुट, प्रकाशानंद सरस्वती उसमें थे, प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य वहां पर थे, और प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य शुरू कर देते हैं कथा। अभी उनकी कथा कैसे होगी, अभी वो पहले मायावती थे और अभी भक्त बने हुए हैं महाप्रभु के संग में, उनकी चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है। और महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हमारे गांव गांव में घूमते थे तब वो सुनते थे लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, तो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण भी अभी सुन रहे हैं, कान लगाकर सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये मायावादी, अभी देखते कितना परिवर्तन आया हुआ है। और वो प्रकाशानंद सरस्वती के एक शिष्य, बड़े शिष्य, वो भी प्रकाशानंद सरस्वती के जैसे तेजमान तेजोमय बड़े सन्यासी, वो अभी बता रहे हैं। क्या बताते हैं वो, आपस में चर्चा चल रही है उनकी, महाप्रभु यहां पर नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य है साक्षात नारायण व्यास सूत्रेर अर्थ करें अति मनोरम। क्या महाप्रभु कितने कैसे सन्यासी है, साक्षात नारायण के समान है, और व्यास जी ने जो ब्रह्म सूत्र दिया हुआ है उसका कितना मनोहर कितना मनोरम अर्थ दिया हुआ है उन्होंने। उपनिषदों का अर्थ ये महाप्रभु कितना सुंदर तरीके से समझाते हैं, जो हमारे मन को, हमारे कर्ण को, हमारे हृदय को संतुष्टि पहुंचाता है। नहीं तो हम लोग वो शुष्क हमारे शंकराचार्य द्वारा दिया गया कपोल कल्पित अर्थ सुना करते थे, जो बिल्कुल हमारे हृदय को भाता नहीं था। क्या सुंदर अर्थ करते हैं महाप्रभु। भक्ति बिना मुक्ति न है भागवते कोई, कली काले नामा भासे सुखे मुक्ति होए। कि भक्ति के बिना जो है वो मुक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकती, ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कली काले नामा भासे सुखे मुक्ति होए। कलयुग में तो केवल नाम का आभास भी होता है, कोई नामाभास के स्तर पर भी जप करता है तो भी उसे सुख पूर्वक आसानी से मुक्ति मिल सकती है। और श्रीमद् भागवत का ये श्लोक वो मायावादी सुनाते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास्त्वयि असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मद् अंग्रयः। श्रील प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करने के लिए इस श्लोक का प्रयोग करते हैं, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। मायावाद खंडन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी वही मायावादी अभी परिवर्तित हो गए हैं, वही श्लोक दोहरा रहे हैं, महाप्रभु की कृपा कितनी उनके ऊपर हुई होगी। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, ये लोग अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, तो ही असद भावात अविशुद्ध बुद्धयः, इनके हृदय में बिल्कुल भाव भक्ति नहीं होती है और उनके बुद्धि कलुषित हुई रहती है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, भले बहुत कष्ट करके ये परम पद को, ब्रह्म पद को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पतंति अधः अनादृत युष्मद अंग्रयः, आपके चरणों का तिरस्कार किया हुआ है इसलिए पुनः वहां से उनका पतन होता है, ये मायावादी बताते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चिदानंद कृष्ण विग्रह माइकोरिमानी यही बड़ पाप सत्य चैतन्य रवाणी, कि चिदानंद कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम लोग उसे माया मान बैठते थे और ये बड़ा पाप हम लोग कर बैठे है, और चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है वो बिल्कुल सत्य है। अवजानंति मा मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो, गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक भी वो मायावादी कोट करते है। व्यास सूत्र अर्थ आचार्य कोरियाचे आच्छादन यही है सत्य श्री कृष्ण चैतन्य वचन। हमारे जो आचार्य शंकराचार्य उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य किया है वो तो आच्छादित किया हुआ है, माने सूर्य को आच्छादित किया हुआ है, लेकिन ये जो महाप्रभु ने सत्य वचन कह के उसके अर्थ को, उसके मूल अर्थ को प्रकट कराया है। एतको ही सेही करे कृष्ण संकीर्तन शूनी प्रकाशानंद की छू कहे न वचन। अभी वो शिष्य शांत बैठ गया और कीर्तन करने लगा वहीं पे इस प्रकार से बोल के। अभी प्रकाशानंद सरस्वती कुछ बोलना प्रारंभ करते थे, सुनी प्रकाशानंद किचु कहे न वचन। प्रकाशानंद क्या वचन कहते हैं? वो कहते कि देखो हमारे आचार्य वेदांत सूत्र का जो अद्वैतवाद है उसको स्थापन करने के लिए उन्होंने अपने मनोकल्पित भाव से कुछ अर्थ प्रकट कराए हैं, और शास्त्र में जो अपना अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है वो शास्त्रों को किसी भी प्रकार से जो है वो अपने अपने मत के हिसाब से देखता है और उन्हें प्रस्तुत करता है, और शास्त्रों का सही अर्थ नहीं बताया जाता कभी। और इस प्रकार से वो कहते कि 6 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, मीमांसक सांख्य न्याय मायावाद पतंजल और वेदांत। तो वो कहते कि जो मीमांसक है वो कहते है कि ईश्वर माया के, ईश्वर जो है वो कर्म के अधीन होते हैं, ये है मीमांसक सिद्धांत, ईश्वर कर्म के अधीन। दूसरा होता है सांख्य, वो कहते हैं संपूर्ण जगत का कारण भौतिक प्रकृति है, प्रकृति सारी सृष्टि करती है और सब कुछ करती है। न्याय सिद्धांत कहता है कि परमाणु संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और मायावाद सिद्धांत कहता है कि निर्विशेष ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और वेद इस प्रकार से कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण सृष्टि के कारण है। और यदि इन 6 सारे सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाए तो वेदांत सूत्र में सबका विश्लेषण पाया जाता है। तो जो वेदांत में कहा गया है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसमें उन्हें निर्गुण भी कहा जाता है। वास्तव में क्यों निर्गुण कहा जाता है, अभी देखो मायावादी ये केवल निर्गुण निर्गुण शब्द का प्रयोग करते हैं, वो अभी परिभाषा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि निर्गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भौतिक गुण कुछ नहीं होते हैं, सब आध्यात्मिक गुण भगवान के अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। और ये 6 दर्शन भी हम लोग पढ़ लेंगे तो भी परम सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें जो महाजन है भक्ति में आगे चले गए हैं उनके चरण चिन्हों का अनुगमन हमें करना चाहिए, तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहतम गुहाया महाजनो ये न गतः सपंथा। महाप्रभु ये श्लोक उद्रुक्त किए थे, आपको याद है कहां पर? महाप्रभु स्वयं बताए थे जब सोनोडिया ब्राह्मण के घर पे प्रसाद के लिए गए थे कि उन्हें कहे थे कि माधवेंद्रपुरी आपके घर पे आए थे इसलिए मैं आपके घर पे प्रसाद के लिए आया हूं। तो महाप्रभु जो श्लोक कोट किए थे वही श्लोक अभी प्रकाशानंद सरस्वती बता रहे हैं कि तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतियों विभिन्ना, तर्क के द्वारा परम सत्य की स्थापना कभी नहीं की जा सकती, कितने सारे श्रुतियों को भी अब पढ़ लो, क्योंकि ऋषि उनका स्वभाव क्या होता है, नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, इनके मत में यदि भिन्नता नहीं है तो उन्हें ऋषि नहीं कहा जाता, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम, भक्तों के हृदय में धर्म का तत्व छुपा हुआ रहता है, इसलिए महाजनो येन गतः सपंतः, इसलिए ऐसे महान जनों के चरण चिन्हों का अनुगमन हमने करना चाहिए। और प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृते रधार तिहो ये कह ये वस्तु सही तत्व सार। महाप्रभु की वाणी तो ये अमृत के धार की समान है, और वो जो कहते हैं वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल सत्य है, उसका हमें पालन करना चाहिए। और ये सब महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण वहां पे सुन रहा है, इतना उसके हृदय में मानो गुब्बारे फूट रहे, इतना खुश हो रहा है कि वाह क्या परिवर्तन हो गया है। और भागते भागते वहां से वो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण महाप्रभु के पास आता है, महाप्रभु क्या कमाल कर दिया आपने, क्या परिवर्तन हो गया इन लोगों का। और महाप्रभु वहां पे अभी स्नान करके बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, महाप्रभु केवल स्मित हास्य करते हैं और आगे जाते हैं दर्शन करने के लिए। उनके साथ चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्रा और जो सनातन गोस्वामी वहीं पर अभी भी है, उनके लेके महाप्रभु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और वहां पर इतना सुंदर नृत्य और कीर्तन होता है, चौदी के ते लक्ष लोक बले हरी हरी उठिला मंगल ध्वनि स्वर्ग मर्त्य भरी। इस प्रकार से 14 लोगों तक उनका जो है वो कीर्तन बले हरी हरी, इस प्रकार की हरि ध्वनि हो रही है, उठिला मंगल ध्वनि, जो मंगल ध्वनि है हरि नाम की वो उठ रही है और कहां कहां तक जा रही है, स्वर्ग मर्त्य भरी, संपूर्ण स्वर्गलोक और सारा मर्त्यलोक उस हरिध्वनि ने जो है वो भर दिया है। प्रकाशानंद सरस्वती जब समझ में आता है उसे कि महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए, अपने सारे शिष्यों को लेके बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो जाता है। महाप्रभु जैसे ही देखते प्रकाशानंद सरस्वती को, महाप्रभु उनके चरण छूने लगते है और महाप्रभु कहते है, प्रभु कहे तुम्ही जगत गुरु पूज्यतम आमी तोमार न होई शिष्य र शिष्य सम। महाप्रभु की नम्रता देखिए, महाप्रभु कहते हैं तुम्हें जगत गुरु पूज्यतम, आप तो जगत गुरु है और सबके द्वारा पूज्य है। आमी तोमार न होई शिष्य र शिष्य सम, आपके शिष्य के समान भी नहीं हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि महाप्रभु हाथ जोड़ के आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए, आप साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है और मैं कितना हीन हूं, कृपया मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। और वो चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि कृपया मुझे चरण स्पर्श करने दीजिए, क्योंकि मैंने आपके प्रति इतना अपराध किया है, आपकी मैं निंदा किया करता था, यदि आपके चरण को मैं छूंगा तब जाके जो है वो मेरे अपराध की क्षमा मिल सकती है। प्रकाशानंद कहे तुम्हें साक्षात भगवान तबु यदि करता र दास अभिमान, आप स्वयं भगवान है लेकिन आप स्वयं अपने आप को भगवान के दास मानते हैं, तबु पूज्य हो तुम्हें बड़ आत्मा होते सर्वनाश होय मर तोमार निंदाते। आप अपने आप को भगवान के दास मानते हैं लेकिन फिर भी आप मेरे लिए पूज्य हो और आप मेरे से बड़े भी हो भक्ति में, और क्योंकि आपकी मैंने निंदा की है इसलिए मेरा सर्वनाश हो सकता है। और वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का श्लोक बताते हैं, जो भी किसी महान भक्त की निंदा करता है, उनका अवमान करता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। आयु श्रीयम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रमः। पुंसो महत अतिक्रमः, किसी महान व्यक्ति की निंदा करता है, कुछ करता है, कुछ क्षति पहुंचाता है, तो उसका आयु कम हो जाता है। हिरण्यकश्यप उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, आयु श्रियम उसका सौंदर्य, उसका ऐश्वर्य, यशो धर्मम उसका कुल, उसका धर्म और जितने सारे आशीर्वाद एकत्रित किए हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाता है यदि किसी महान व्यक्ति के प्रति अपराध किया जाता है। तो ये अभी प्रकाशानंद सरस्वती की बुद्धि ठिकाने आ रही है और चरणों में बैठ जाता है और महाप्रभु को कहता है, प्रश्न पूछने लगता है कि हे महाप्रभु, आपने जो मायावाद के दोषों का दर्शन दिया है, जो महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर पे प्रसाद के लिए गए थे तो जो मायावादी दर्शन में क्या क्या दोष है वो वहां पर महाप्रभु ने बताया था, विवर्तवाद और परिवर्तनवाद, इस प्रकार से वहां पे वर्णन आता है, वो हमने चर्चा की थी हमारे आदि लीला के 7वें अध्याय के समय, कैसे उन्होंने मायावाद भाष्य में दोष दिखाए थे। तो वो कहते कि वो दोष तो हमें समझ में आ गए हैं और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या आप इतने मनोरम दृष्टिकोण से करते हैं तो थोड़ा ब्रह्म सूत्र के ऊपर हमारी सुनने की अभिलाषा है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। महाप्रभु कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो एक सामान्य जीव हूं, ब्रह्म सूत्र जो साक्षात भगवान के शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव जी इनके द्वारा लिखा गया है, उनसे ज्यादा अच्छा व्याख्या कौन कर सकता है। यही सूत्रकर्ता से यदि करये व्याख्यान तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर होय ज्ञान। जिस व्यक्ति ने लिखा हुआ है वही यदि इसकी व्याख्या करे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। तो जो ओमकार है, प्रणव है, उसका अर्थ हमें गायत्री मंत्रों में मिलता है और सारे गायत्री का अर्थ जो है हमें चतुश्लोकी भागवत इसमें मिलता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम ज्ञान दिया चार श्लोकों में, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। यही चार श्लोकों का जो ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने उसे नारद मुनि को प्रदान किया, नारद मुनि ने उसे व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने इसका काफी सारा विस्तार किया, चार वेद लिखे, 108 उपनिषद लिख दिए, उसके बाद इन सब का निष्कर्ष रूप में वेदांत सूत्र भी लिख दिया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। श्रीमद भागवत के पहले स्कंद में इसका वर्णन आता है। फिर नारद मुनि आते हैं, कहते कि आपने भगवान का ठीक से गुणगान नहीं किया है, और इस प्रकार से श्रीमद भागवत की रचनाओं करते थे। तो इसलिए महाप्रभु कहे कि वेदांत सूत्र की वास्तव में जो टीका है वो श्रीमद भागवतम है। अतएव ब्रह्म सूत्रेर भाष्य श्री भागवत, भागवत श्लोक उपनिषद कोहे एक मत। कई लोग श्रीमद भागवत को प्रमाणित नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु पूरी परंपरा स्थापित करके बता रहे हैं कि अतएव ब्रह्म सूत्रेर भाष्य श्री भागवत, ब्रह्म सूत्र का ही भाष्य है श्रीमद भागवतम, और जो उपनिषद है और जो श्रीमद भागवत है इनके मत भिन्न नहीं है। भागवतेर संबंध अभी ध्येय प्रयोजन चतुश्लोकित प्रकटता रिया छे लक्षण। सारे वेदों में जैसे हमने कहा था कि वेदे तीन वस्तु का है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन वस्तुओं का बारे में संपूर्ण वेद में बताया जाता है। महाप्रभु कहते हैं श्रीमद भागवत में भी इन तीन के बारे में हमें मिलता है वर्णन, और खास करके चतुश्लोकी भागवत में ये तो गहराई में छिपा हुआ है संबंध अभिधेय और प्रयोजन। और पहले ये तीन क्या है वो समझाते हैं। आमी संबंध तत्व, अमर ज्ञान विज्ञान, आमा पैते साधन भक्ति, अभिधेय नाम। आमी संबंध तत्व, भगवान कृष्ण के बारे में जो भी सब कुछ है ये कौन, ईश्वर अभी ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, ये महाप्रभु सुना रहे हैं बंगाली में। मानो अभी ईश्वर किसे बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण। आमी संबंध तत्व, मैं जो हूं, मेरे बारे में जानकारी रखना, ज्ञान विज्ञान मेरे बारे में जानना, ये क्या है, ये है संबंध ज्ञान। आमा पैते साधन भक्ति अभिधेय नाम, मुझे प्राप्त करने के लिए जो साधन भक्ति है उसका नाम है अभिधेय। साधन एर फल प्रेम मूल प्रयोजन, साधन का फल क्या है, प्रेम, वो है प्रयोजन। यही प्रेमे पाए जीव अमर सेवन, और इस प्रेम को जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो कोई बद्ध जीव आध्यात्मिक संसार में अपना मूल स्वरूप और मेरी सेवा पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से सब जगह हमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन मिलता है। तो महाप्रभु कहे कि ये जो चतुश्लोकी भागवत है, चार श्लोक जो ब्रह्मा को भगवान ने सुनाए थे, इसमें भी संबंध अभिधेय और प्रयोजन मिलता है। तो जो भी आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब आप संबंध अभिधेय और प्रयोजन की चर्चा निकाल के देख सकते हैं। तो भगवद गीता में भी संबंध अभिधेय और प्रयोजन की चर्चा की गई है। जब आप गीता का अध्ययन करेंगे तो आप जहां पर भी भगवान का गुणगान होगा, कृष्ण के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, अहम सर्वस्य प्रभोः मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय, जहां जहां पर जो भगवत्ता का ज्ञान होता है वो संबंध ज्ञान है। जहां जहां किस प्रकार से उस संबंध को पुनः स्थापित किया जा सकता है, मन मनाभव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, ये जो है वो क्या है, वो अभिधेय ज्ञान है, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, ये है अभिधेय ज्ञान। और प्रयोजन क्या है, किस प्रकार से पुनः भगवान की सेवा में जीव स्थापित हो सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम मामे वैश्यस्य असंशय, वो मेरे पास आ जाएगा, वो है प्रयोजन। तो इस प्रकार से आप कौन सा भी शास्त्र पढ़ेंगे तो आप सक्षम होने चाहिए कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन क्या उस श्लोक में दिया गया है उसे निचोड़ के निकालने में। इसे कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन। तो अभी महाप्रभु जो श्रीमद भागवत के चतुश्लोकी भागवत कहा गया है, ये चार श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, ये चार श्लोक आते हैं, नोट कर सकते हैं, श्रीमद भागवत का स्कंद दूसरा अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 34, 35 और 36, इसे कहा गया है चतुश्लोकी भागवत। ये चार श्लोकों में जो है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। ये है चार श्लोक श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 9, 33, 34, 35, 36। तो इनका वर्णन आता है। तो अभी महाप्रभु पहले इनका अर्थ बताते हैं और बाद में श्लोक सुनाते हैं। तो सबसे पहले संबंध ज्ञान के बारे में पहले दो श्लोक है इसमें चतुर्श्लोकी में, वो संबंध ज्ञान बताते हैं। एक श्लोक अभिधेय ज्ञान बताता है और एक श्लोक प्रयोजन ज्ञान बताएगा। सृष्टि पूर्व, ये अभी हम लोग मध्य लीला अध्याय 25 का श्लोक संख्या 110 के आगे चर्चा कर रहे हैं। सृष्टि पूर्वे षडैश्वर्य पूर्ण अमित होते प्रपंच प्रकृति पुरुष अमाते लय। ये संपूर्ण सृष्टि होने से पहले भी मैं षडैश्वर्य रूप में उपस्थित था। ये अभी कौन सुना रहा है? ये डायरेक्ट कृष्ण ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, ऐसी वार्ता यहाँ पे हो रही है। प्रपंच संपूर्ण भौतिक शक्ति, प्रकृति यानी ये भौतिक प्रकृति, और पुरुष मतलब जीवात्मा अमातेयु लय मुझ में ही स्थित है। तो मैंने ही इन सबको प्रकट कराया है, सृष्टि के पहले मैं उपस्थित था। सृष्टि करी तार मध्य आमी प्रवेशिये प्रपंच ये देख सब सेह आमी होइए। और मैंने अपने आप को विस्तार करके सृष्टि के अंदर प्रवेश करा दिया है। प्रलये अवशिष्ट आमी पूर्ण होइए प्राकृत प्रपंच पाय आमाते ही लये। सारा ब्रह्मांड का जब लय हो जाता है तो पूर्ण चेतन बचा रहता है मैं, और दिखने वाली हर वस्तु पुनः मुझ में आ जाती है, समा जाती है। और इसलिए चतुर्श्लोकी का जो पहला श्लोक है, दूसरे अध्याय का 9वें अध्याय का 33वां श्लोक, वो सुनाया जाता है जो संबंध ज्ञान बताया गया है। अहमेव आसमेव अग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहं तदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं रहता हूं और कोई अन्य चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म कुछ नहीं रहता है। सृष्टि के बाद भी हर वस्तु मैं रहता हूं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं मेरे अंदर चली जाती है। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो ये हो गया पहला श्लोक संबंध के बारे में। तो इसमें सुना रहे भगवान अहम एव श्लोके अहम 3 बार पूर्णेश्वर्य श्री विग्रह स्थितिर निर्धार। अहम यहां पर इस श्लोक में 3 बार आता है। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चात अहम यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्य अहम। तो अहम यहां पर जो 3 बार आ रहा है तो इसमें कहते हैं कि अहम की पुनरावृत्ति से भगवान दिव्य पुरुष है इसकी पुष्टि होती है। ये विग्रह नाही माने निराकार माने तारे तिरस करी बारे कोरिला निर्धारणे। इस निर्धारण से क्या बताया गया है कि जो भगवान है वो विग्रह के रूप में मानने चाहिए, जो निराकार मानते हैं वो तो मूर्ख लोग है। यही सब शब्द है ज्ञान विज्ञान विवेक माया कार्य माया होते आमी व्यतिरेक। इन सारे शब्दों में वास्तविक में आध्यात्मिक ज्ञान और उसका विज्ञान जो है वो बताया गया है। यद्यपि बहिरंगा शक्ति मुझसे ही उत्पन्न है किंतु मैं जो हूं वो उससे अलग हूं। ये सूर्य स्थाने भास ये आभास सूर्य बिना स्वतंत्रता ना हो यो प्रकाश। जिस प्रकार से सूर्य प्रतिबिंबित हो जाता है कहां पर, तो प्रतिबिंब रूप जो है वो हमें सूरज के समान लगता है, लेकिन जब सूरज नहीं है तो उस प्रतिबिंब भी वहां पर कुछ अर्थ उसका नहीं होता है। प्रतिबिंब होना संभव ही नहीं है बिना सूरज के। मायातीत होइलो होय अमार अनुभव यही संबंध तत्व कहिलु सुन आर सब। दिव्य पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेरा अनुभव कर सकता है, यह अनुभव परमेश्वर के साथ का संबंध का आधार है। इसके विषय में मैं आगे सुनाता हूँ और इसका 34वां श्लोक दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का जो संबंध के बारे में बताता है, चतुर्श्लोक का 2वां श्लोक। वृतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात आत्मनो मायाम यथाभासो यथातमः। मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न तो प्रतिबिंब होता है। तो संस्कृत में जो श्लोक के अनुवाद है वो थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन आप बंगाली जो पढ़े थे हमने वो सुंदर लगते हैं और आसान भी लगते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य के बिना जो है वो प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उस प्रकार से कृष्ण के बिना माया का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। ये जो है वो भगवान का संबंध, भगवान के भगवत्ता के बारे में ज्ञान, मतलब संबंध ज्ञान। अभी महाप्रभु कहते हैं अभिदेय के बारे में सुनना चाहेंगे। अभिदेय साधन भक्तिर सुनह विचार सर्व जन देश काल दशाते व्याप्ति यार। अभी जो मैं अभिदेय के बारे में सुनाऊंगा ये भगवान की भक्ति होती है। सर्व जन सारे लोग, समस्त देश, समस्त काल और समस्त दिशाएं उसमें ये व्याप्त रहती हैं। धर्मादि विषय ऐसे ये चारी विचार साधन भक्ति ए चारी विचारे पार। जहां तक धर्म के सिद्धांतों का संबंध है उसमें ये व्यक्ति देश काल और दशा इन चारों का विचार किया जाता है। किस किस का विचार किया जाता है धर्म के सिद्धांतों में? व्यक्ति देश काल और दशा। लेकिन जो भक्ति है ये साधन भक्ति ये चारी विचारे र पार, इसमें चारों का विचार नहीं होता है। कौन व्यक्ति है, कौन से देश का है, किस काल में है और कौन सी दशा में स्थित है, इसका विचार नहीं किया जाता है। सर्व देश काल दशाए जनेर कर्तव्य गुरु पाशे से ही भक्ति पृष्टव्य श्रोतव्य। तो सारे कई कौन सी भी देश में, काल में, दशा में कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है उसका एकमात्र कर्तव्य है कि गुरु की शरण ग्रहण करे और उनसे प्रामाणिक रूप से प्रश्न पूछे और जो गुरु आदेश दे रहे हैं उनको ठीक से सुने। अभी महाप्रभु दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 36वां श्लोक जो अभिदेय बताता है। 33 34 हो गए संबंध, अभी 36 आ रहा है अभिदेय। एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वव्यापक सत्य के विषय में जानने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु की शरणागति ग्रहण करके उनसे प्रश्न करें। तो यह है अभिदेय कि किस प्रकार से गुरु से ज्ञान प्राप्त करना और उसको विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए साधना करना, यह है अभिदेय। और इसके बाद महाप्रभु कहते हैं मैं थोड़ा प्रेम प्रयोजन के बारे में बताता हूँ। अमते ये प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन कार्य द्वारे कोहितार स्वरूप लक्षण। अमते ये प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन, जब किसी व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार से साधना करने के पश्चात, गुरु का अनुगत्य करने के पश्चात प्रेम प्राप्त होता है उसे ही प्रयोजन कहते हैं। और इसके जो लक्षणों के बारे में मैं आपको उदाहरण से सुनाऊंगा क्या होता है प्रेम या प्रयोजन का लक्षण। पंचभूत ऐसे भूतेर भीतरे बाहिरे भक्त गणेश फुरी आमी बाहिरे अंतरे। जिस प्रकार से पंचभूत व्यक्ति के शरीर के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, जैसे पंचभूत हमारे शरीर में भी होते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन पांचों से हमारा शरीर बना हुआ है। और वही पांच तत्व हमें हमारे बाहर भी दिखते हैं, पृथ्वी दिखती है मतलब मिट्टी दिखती है, जल तत्व दिखता है, जल होता है हमारे शरीर के भी बाहर, आकाश दिखता है, हवा दिखती है, अग्नि दिखाई देता है। तो इस प्रकार से पंच तत्व जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं वही पंच तत्व हमारे शरीर के बाहर भी होते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं भक्त गणेश फुरी अमर बहिरे अंतरे, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो अपने अंदर भी मेरा स्मरण करते हैं और बाहर भी जो कुछ देखते हैं उसमें उन्हें मेरा ही स्मरण होता है। यदि आपको रामानंद राय का संवाद याद आता होगा तो महाभागवत के लक्षण वहां पर महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होयो निज इष्ट देव स्फूर्ति। और श्रीमती राधारानी के बारे में भी प्रेम का लक्षण का वर्णन किया गया है। यहां कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। वो कृष्णमयी है। कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, जिनके कृष्ण अंदर भी है और बाहर भी है। यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां जहां नेत्र पड़ते हैं उनको कृष्ण का स्मरण हो जाता है। यह है भगवत प्रेम का लक्षण। और फिर बताया गया है ये कहां पे आता है प्रयोजन, श्रीमद भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 35वां श्लोक जो प्रयोजन के बारे में बता है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके बाहर भी बने रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूं और उनके भीतर नहीं भी रहता हूं, मतलब भीतर भी रहता हूं और बाहर भी रहता हूं। भक्त अमा प्रेमे बंदिया छे हृदय भीतरे, यहां नेत्र पड़े तहां देखो ये आ मारे। कि जो भक्त है वो प्रेम के कारण अपने हृदय में मुझे बंदिस्त कर लेते हैं, इसलिए मैं उनके अंदर हूं और जहां जहां उनके नेत्र पड़ते हैं वो मुझे ही देखते हैं। ये है भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रेम स्तर तक पहुंच गए हैं। आपको यदि मैं प्रामाणिक रूप से बताऊं, जब मुझे पहली बार समझ में आ गया था कि ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 33, 34, 35, 36 ये श्लोक प्रयोजन के संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताते हैं, तो कितना ढूंढ ढूंढ के देखा लेकिन कुछ पता नहीं चला कि कहां पर बता रहे हैं। और जब चैतन्य चरितमृत पहली बार पढ़ा और ये श्लोक महाप्रभु के मुख से सुने कि जो ईश्वर द्वारा ब्रह्मा जी को बताए जाते हैं, तब जाके समझ में आता है कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन कैसे चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम में भी जो है वो छिपा हुआ है। और प्रयोजन के बारे में और इस प्रकार से वर्णन देते हैं, श्रीमद् भागवत भगवद गीता में भी कहा गया है, सर्वभूतेषु यह पश्य मैं सारे भूतों के अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, यह गीता में भी पाया जाता है। और श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का जो उत्तम भक्त होता है उसका उदाहरण हमने देखा था, याद है कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी की चर्चा की थी हमने, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया था। तो जो उत्तम भक्त होता है उसका लक्षण क्या होते हैं, सर्वभूतेषु यह पश्यत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। यह उत्तम भागवत का लक्षण है, सर्वभूतेषु यह पश्यत भगवत भावमात्मनः, वो भगवान के ही अंश है, इस चेतना में सब कुछ देखता है। यह है प्रयोजन। और निष्कर्ष में महाप्रभु कहते हैं, अतएव भागवते एतिन कै संबंधाभिधेय प्रयोजनमय। इस प्रकार से जो चतुश्लोकी भागवत है जो ब्रह्मा जी को सुनाया गया था भगवान के द्वारा, इन चतुश्लोकी में भी संबंध अभिधेय प्रयोजन है और संपूर्ण भागवत में भी जो है वो संबंध अभिधेय और प्रयोजन पाया जाता है। और महाप्रभु फिर श्रीमद् भागवत के अन्य श्लोकों में भी कहां कहां पर संबंध अभिधेय और प्रयोजन पाया जाता है इसकी चर्चा करते हैं। जैसा वो श्लोक जिसमें भगवान को तीन रूप से देखा जाता है उसको बताते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो एक संबंध के बारे में बताते हैं, एतेचांशः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे एतेच अंशः। ये सब पारी लिस्ट बता दी गई है शौनकादि ऋषियों को, सूत गोस्वामी ने संपूर्ण लिस्ट के पश्चात बताते हैं कि ये तो सब अंश और कला है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये संबंध ज्ञान में आता है। एत संबंध शुन अभिधेय भक्ति भागवते प्रतिश्लोके व्यापियार स्थिति। ये मैंने संबंध बताया, अभी अभिधेय सुनो जो श्रीमद् भागवत के हर एक श्लोक में जो व्याप्त है। और कई सारे श्लोक बताते हैं, भक्त्या हम एक ग्राह्य, मुझे केवल भक्ति के बारे भक्ति से ही जाना जा सकता है। और जो उद्धव को भागवत में बताया गया है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धय उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जितः भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुधा भजेत्तम भक्त्यै कयेशम गुरुदेवतात्मा। इस प्रकार से भक्ति की महानता बताने वाले कई सारे श्लोक है जिनको महाप्रभु जो है वो दोहराते हैं। और कहते हैं अभी प्रेम एवेशु न प्रेमयी मूल प्रयोजन पुलकाश्रु नृत्य गीत यहार लक्षण। अभी प्रेम सुनो, प्रेम प्रयोजन, प्रेम जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है हमने देखा है अभी अभी कल 23वें श्लोक में, जिसको प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं। और यही श्लोक हमने वहां पर देखा था, वो यहां पर भी आया है, स्मरंतः स्मारयन्तश्च मिथौ गौ गौ हर हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत फूल काम तनुम एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चय हसती अथो रोदिति रौति गायति। उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य, कल हमने इसकी चर्चा की थी, श्लोक का अनुवाद भी बताया था। तो इस प्रकार से प्रेम के बारे में भी महाप्रभु कहते हैं कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। अतएव भागवत सूत्रेर अर्थ रूप निज कृत्य सूत्रेर निज भाष्य स्वरूप, इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का अर्थ रूप में भाष्य रूप में स्वीकार करना चाहिए और महाप्रभु श्रीमद् भागवत की महिमा गान करते हैं। सर्ववेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। 12वें स्कंद में श्लोक आता है, 13वें अध्याय का 15वां श्लोक है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो है संपूर्ण वेदों का सार है और इसके रस में कोई तृप्त हो जाता है तो अन्यत्र कहीं भी उसकी रुचि नहीं चाहती। और महाप्रभु फिर श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक दूसरा श्लोक ये भी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र है ते परम महत्व। जो कृष्ण भागवत क्या है, कृष्ण भक्ति रूप स्वरूप, कृष्ण भक्ति का रूप का स्वरूप रूप में श्रीमद् भागवत पाया जाएगा और इसका इसलिए जो है वो बहुत ही महत्व है। और तीसरा श्लोक बताते हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय का, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसका आप आस्वादन करो हे रसिकगण। ये सारे निगम कल्प सारे वेदों की तुलना की जाती है वृक्ष के साथ और जिसको जो फल लगता है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, ये सारे वेदों रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है और इसको आप पियो, इसका आस्वादन करो, बाकी आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अतएव भागवत करह विचार इहा हिते पाबे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार, इसलिए आप श्रीमद् भागवत का जो है वो विचार करो और उसको सुनो, उसको समझो। यह भी महाप्रभु सुनाते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती को सुना रहे हैं। आप है मेरे साथ, महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के सब सुनाते थे। अभी तक की चर्चा जो थी वो महाप्रभु इस भाव में बता रहे थे मानो ब्रह्मा को भगवान सुना रहे हैं। अभी महाप्रभु अपने स्वयं के भाव में प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश करते हैं, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन हेलाय मुक्ति पाबे प्रेम धन। निरंतर आप कृष्ण नाम का कीर्तन करो, अरे मुक्ति विक्ति तो छोड़ दो, आपको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त हो जाएगा, आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बारे में भी कई सारे रेफरेंसेस महाप्रभु बताते हैं। और यह सब होने के पश्चात वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहीं पर उपस्थित है, यह सब बिंदु माधव मंदिर में हो रहा है और प्रकाशानंद सरस्वती यह सब भक्त बैठे है, तपन मिश्रा सनातन गोस्वामी सब बैठे हुए है। सनातन गोस्वामी को जो हमने कल के अध्याय में चर्चा की थी 61 अर्थ बताए थे आत्माराम श्लोक के, वो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण बताता है प्रकाशानंद सरस्वती इन सब की ओर देख के। आपको पता है आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक की महाप्रभु ने 61 प्रकार से व्याख्या की थी है। सनातन गोस्वामी को उन्होंने सुनाया, उन्होंने हमको भी सुनाया है। सारे लोग आश्चर्यचकित होके महाप्रभु हमें भी सुनाइए। और इस प्रकार से महाप्रभु संपूर्ण 61 जो अर्थ है उनका पुनः प्रकाशित करते हैं सबके सामने। और कविराज गोस्वामी कहते हैं मैंने पहले ही सुना दी है, अभी मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, तो क्योंकि पूरा वो कितना बड़ा अध्याय आपने देखा होगा और हमने भी कल विस्तार से तो नहीं लेकिन सूत्र रूप से 61 अर्थ जो है वो बता दिए। इस प्रकार से महाप्रभु सबको सुना देते हैं और सब लोग फिर कहते हैं कि महाप्रभु आप तो स्वयं भगवान है। और महाप्रभु वहां से निकलते हैं और सारा काशी ग्राम, ये मायावादी उनके हजारों शिष्य थे, संपूर्ण काशी के नगरवासी लोग सब लोग भक्त बन के कीर्तन करने लगते हैं, मानो ये सारा काशी एक द्वितीय नवद्वीप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शिवासांगन में कीर्तन हुआ करता था वैसा ही कीर्तन अभी काशी में होता है। सारे महाप्रभु अपने निजी पार्षदों से कहते हैं कि मैं वृंदावन जाते समय यहां से गया था और मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि मैं यहाँ पर प्रेम बेचने के लिए आया हूँ लेकिन कोई ग्राहक मुझे नहीं मिल रहा है और आप लोग दुखी हो रहे थे। हमने देखा था किस प्रकार से तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य महाप्रभु को जाके विनती करते आप यहाँ पर कुछ कीजिए, और वो अभी कहते हैं कि आपने दक्षिण का उद्धार किया था, पूर्व में गए थे, पश्चिम का उद्धार किया था, ये वाराणसी रह गया था, आज ये कृष्ण की प्रेम में कीर्तन में ये आज वाराणसी और काशी जो जिसका दूसरा नाम है ये डूब रहा है। और इस प्रकार से महाप्रभु जब चंद्रशेखर आचार्य इनके घर पे रुका करते थे, सारा गांव का गांव लाखों लोग दर्शन के लिए आते थे, लेकिन कौन कौन घर में प्रवेश करेगा, तो इसलिए सबको घर में तो प्रवेश था भी नहीं, कोई कितने लोग आ सकते थे। इसलिए जब महाप्रभु स्नान आदि और दर्शन करने के लिए जब बिंदु माधव मंदिर काशी विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे, तब सब लोग रस्ते के दुतर्फा खड़े रहते थे और महाप्रभु बीच में जा रहे मानो कोई हीरो बहुत बड़ा पंत प्रधान नगर का जा रहा हो, और महाप्रभु सबको हाथ दिखाते जाते थे। बाहुतुली प्रभु कहे बल कृष्ण हरि दंडवत करे लोके हरि ध्वनि करी, सब लोगों को हाथ ऊपर करके महाप्रभु कहते थे कृष्ण कहो हरि कहो, और सारे लोग इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे और महाप्रभु को दंडवत करते थे, उनको होलसेल कृपा इस प्रकार से रस्ते पे महाप्रभु प्रदान किए। इस प्रकार से 5 दिन तक महाप्रभु जो है वो वाराणसी में रहे। महाप्रभु अभी निश्चय करते हैं कि चलो मैं अभी जगन्नाथपुरी में जाता हूँ, कई भक्त वहां पर राह देख रहे हैं, तो अभी तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य सारे भक्तगण महाप्रभु के पीछे पीछे लगते हैं, हमें भी आना है। महाप्रभु कहते हैं बिल्कुल नहीं, आप यहीं पर रहिए, घर पर रह के भक्ति का पालन कीजिए, लोगों को प्रचार कीजिए, क्योंकि मैं अभी अकेला पुनः झारखंड जंगल के रास्ते से जाने वाला हूँ। और महाप्रभु सनातन को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अभी वृंदावन में जाइए, कल ही उन्होंने 4 आज्ञा दी थी, आप वृंदावन में जाइए और वहां पर मैंने रूप और अनुपम को पहले ही भेज दिया है, और जो भी भक्त वृंदावन में आएंगे बंगाल से या पुरी से उनको आप आश्रय प्रदान करना, उन्हें सेवा करना, ये और एक 5वीं आज्ञा यहाँ पर देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं कि हम भी वृंदावन में जो भी भक्त आते हैं अमेरिका आदि से, उनके रहने की व्यवस्था उन्हें हम भी इस्कॉन संस्था के रूप में आश्रय प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन देखिए श्रील प्रभुपाद जी भी करते हैं, क्योंकि सनातन को उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो भक्त आएंगे उनको आश्रय प्रदान करना, इसलिए वहां पर जो है वो गेस्ट हाउस बनाया गया। मायापुर का चंद्रोदय मंदिर यदि आपको याद है, मंदिर बनने से पहले भक्तों का निवास स्थान बनाया गया था और उसके पश्चात मंदिर बना था। तो इस प्रकार से एज इट इज प्रभुपाद जी भी महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से अभी महाप्रभु जा रहे हैं, हम लोग हमारा कैमरा लेके आते हैं दूसरी ओर, जहां पर रूप गोस्वामी अभी वृंदावन में पहुंच गए हैं, जिनको महाप्रभु ने 19वें अध्याय में शिक्षा दी थी और उन्हें कहा था आप वृंदावन जाइए, तो वहां से वृंदावन गए हैं रूप गोस्वामी। और अभी हमारा कैमरा आता है मथुरा की ओर, जहां पर रूप गोस्वामी गए हैं। महाप्रभु वहां पर सुबुद्धि राय नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। तो सुबुद्धि राय को महाप्रभु मिलते हैं। ये सुबुद्धि राय कौन थे? ये सुबुद्धि राय पहले बंगाल में बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे और उनका एक सेवक था मुस्लिम सैयद हुसैन खान। तो ये सैयद हुसैन खान जो था उसे एक कुआ खुदाने का काम सुबुद्धि राय इन्होंने सौंपा था, और उसमें उसने कुछ गफलत की थी इसलिए उन्होंने सजा दी थी और उसे कोड़ों से मारा था। तो जब उसे कोड़ों से मारा था तो वो सुधर गया था, और फिर सुधरने के पश्चात उसका धीरे धीरे जाके प्रमोशन हो गया था और वहां के राजा ने उसे नवाब बना दिया था। तो जब वो नवाब बन गया तब उसने सुबुद्धि राय को कृतज्ञता पूर्वक और अपने पिता के रूप में मानता था और उनको भी प्रमोशन दिया था और उन्हें कई सारा ऐश्वर्य प्रदान किया था। तो एक बार की बात है जब ये सैयद हुसैन खान अपने घर में था तो उसकी पत्नी ने उसके शरीर के ऊपर वो चाबुक के घाव देखे और वो सोचने लगी कि अरे ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार से मैंने गलती की थी तब सुबुद्धि राय ने मुझे मारा था। मार डालो सुबुद्धि राय को, उनकी पत्नी कहती है सैयद हुसैन से, मार डालो। तो वो अभी कहते कि वो तो मैं कृतज्ञता दिखा उनके प्रति, वो तो उन्होंने मेरी संभाल किया है, मेरी रक्षा की, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, ये असंभव है। तो वो कहती है फिर कम से कम इतना तो करो उसका धर्म भ्रष्ट करके उसे मुसलमान बना दो। तो फिर सैयद हुसैन खान क्या करता है बेचारा, अपनी पत्नी के अधीन था, उसने थोड़ा जल लाया और सुबुद्धि राय के सर के ऊपर छिड़क दिया। उस समय ऐसी प्रथा थी कि कोई मुसलमान यदि इस प्रकार से जल छिड़क दे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सुबुद्धि राय परेशान हो जाते हैं और वहां से भाग के सीधा वाराणसी पहुंच जाते हैं, सब कुछ कारोबार छोड़ के। मैंने अभी क्या करना चाहिए, क्या रास्ता ढूंढना चाहिए। इस प्रकार से वहां पर ब्राह्मणों को पूछते हैं कि मैं क्या करूं, इस प्रकार से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है। सारे ब्राह्मण उस समय के प्रगाढ़ पंडित वो कहते हैं कि गरम गरम घी पी लो और देहांत कर दो, अपनी आत्मा हत्या कर दो। फॉर्चुनेटली महाप्रभु वृंदावन जाते जाते समय वहीं पर थे वाराणसी में। गलती से वो महाप्रभु के पास चला जाता है क्योंकि महाप्रभु वाराणसी में थे। महाप्रभु से पूछता है, महाप्रभु मैंने क्या करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, आप वृंदावन जाइए और केवल कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। तो फिर ये सुबुद्धि राय जो थे वाराणसी से होकर फिर वो प्रयाग, अयोध्या आदि से होकर मथुरा में निवास कर रहे थे। वो वृंदावन में थे और वो क्या करते थे, क्योंकि सब बिजनेस वगैरह छोड़ दिया था तो यहाँ पे जीविका का साधन होना चाहिए, तो क्या करते थे, वो जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़ के लाते थे और उसे मथुरा शहर में जाके बेचते थे। 5-6 पैसे उन्हें उसके मिलते थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं, 1 पैसे के वो चने खाते थे, अपना जीवन यापन करते थे 1 पैसे में, और बचे हुए पैसे जो है वो किसी बनिए के पास संभालने के लिए रखते थे। और क्यों संभालना है पैसा, दुखी वैष्णव देखी तारे करन भोजन, गौड़िया आईले दधी भात तैल मर्दन। जब वो दुखी वैष्णव देखते थे तब उन्हें वो इस प्रकार से दान करते थे, उनको भोजन करने के लिए पैसा देते थे। और जब गौड़िया के कोई वैष्णव आते थे तो उन्हें दही भात मालिश करने के लिए तेल, इस प्रकार से उनकी सेवा करते थे। और खुद के लिए वो केवल चने खाते थे, बाकी कुछ नहीं खाते थे। इतने ये महान भक्त सुबुद्धि राय और रूप गोस्वामी सुबुद्धि राय से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे की कथा एक दूसरे को बताते हैं, व्यथा जो भी है वो बताते हैं। और फिर सुबुद्धि राय रूप गोस्वामी को सारे 12 वनों का वृंदावन का दर्शन करा देते हैं। और दर्शन कराने के पश्चात रूप गोस्वामी वहां पर 1 महीने तक रुकते हैं और उन्हें याद आती है सनातन गोस्वामी महाप्रभु ने कहा था, वो तो छूट के गए होंगे लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं, चलो मैं ही उन्हें देखने के लिए निकलता हूं। और रूप गोस्वामी जो है वो वृंदावन छोड़ के जो गंगा नदी के तट से प्रयाग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रूप गोस्वामी और उनके भाई, आपको नाम है, उनका नाम क्या है, अनुपम, ये दोनों गंगा के पथ से ही होके, जिस पथ से महाप्रभु पहले गए थे उसी पथ से ये पीछे 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 जाते हैं। और अभी क्या हुआ, सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक महाप्रभु वाराणसी में थे, वृंदावन के नजदीक प्रयाग है उसके बाद है वाराणसी, तो महाप्रभु 2 महीने तक वाराणसी में थे और रूप गोस्वामी यहाँ 1 महीने के लिए थे वृंदावन में। तो ये अभी निकल पड़े हैं और सनातन गोस्वामी यहाँ से निकल पड़े हैं। सनातन गोस्वामी को अभी अभी आज्ञा दी आप वृंदावन जाइए। तो क्या हो रहा है, ये गंगा के पथ से जा रहे हैं और सनातन गोस्वामी वापिस आ रहे हैं राजमार्ग से। गंगा पथ है दुई भाई, राज पथ है सनातन, अतएव तहासने ना होइल मिलन। तो राजपथ से सनातन गोस्वामी वृंदावन की तरफ आ रहे हैं और रूप गोस्वामी और जो उनके भाई अनुपम वो प्रयाग को जा रहे हैं। और प्रयाग पहुंचते जो सनातन गोस्वामी वो अभी वृंदावन में पहुंच गए, तो वृंदावन में पहुंच गए तो किसे मिलेंगे, तो वो सुबुद्धि राय से मिलते हैं। और सुबुद्धि राय कहते हैं कि अरे अरे अभी तो तुम्हारे भाई ढूंढने के लिए निकल गए हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो यही रहूंगा, मैं वापस उन्हें ढूंढने के लिए जाऊंगा तो वापस ये हेरा फेरी हो जाएंगी, रुकता हूं यहीं पे। तो सुबुद्धि राय कहते हैं थोड़ी मेरी सेवा स्वीकार करो। तो सुबुद्धि राय सेवा करना चाहते हैं लेकिन सनातन गोस्वामी अभी इतनी सारी शिक्षा लेके आए हैं, वो कहते हैं कि मैं एक सन्यासी व्रत का पालन करूंगा, मुझे आप कुछ सेवा मत प्रदान कीजिए। महाविरक्त सनातन भ्रमेर वने वने प्रति वृक्षे प्रति कुंजे रहे रात्रि दिने। विरक्त सनातन वन वन में भ्रमण करते थे और हर वृक्ष में हर रात को अलग अलग वृक्ष के नीचे अलग अलग कुंज में रहा करते थे। मथुरा महात्म्य शास्त्र संग्रह करिया लुप्त तीर्थ प्रकट कैला वने ते भ्रमिया। उन्होंने मथुरा महात्म्य जो शास्त्र है उसको लाया और सारे लुप्त तीर्थ जो जो वहां पर लुप्त हुए थे उन सबको उन्होंने जो है वो उत्खनन कराया। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे और जो रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभ जो अभी गए हुए हैं वो पहुंचते हैं वाराणसी में। और वाराणसी में वो किने मिले, तपन मिश्रा, चंद्रशेखर आचार्य इनसे मिलते हैं, और जब वो वृत्तांत सुनते हैं वहां पर सारा कि किस प्रकार से महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बदली कर दिया, वो भक्त बन गए, सारा काशी भक्त बन गया, वो वहां पर उनका मन जो है वो आनंदित होता है। और उन भक्तों ने रूप गोस्वामी को, जो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी थी, वो सब रूप गोस्वामी को बताते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की संबंध अभिधेय प्रयोजन में। क्योंकि एक भक्त को शिक्षा मिलती है तो शांत नहीं बैठता, वो दूसरों को बताता है। तो सनातन गोस्वामी ने तपन मिश्रा, चंद्रशेखर आचार्य इन सबको बताया था, और उन्होंने अभी उसे हस्तांतरित किया रूप गोस्वामी को। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी वहां पर 10 दिन तक रुकते हैं, और रूप गोस्वामी अभी बंगाल के लिए चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बीच में ये टर्न हुआ। अभी हम हमारा कैमरा लेके चलते हैं महाप्रभु की, और जो महाप्रभु वाराणसी छोड़ के अभी जा रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य आपको याद होगा, वो उनके सेवक है, और वो अभी जंगल से निकल रहे हैं। तो झारखंड जंगल में पुनः एक बार बलभद्र भट्टाचार्य उनके अच्छे से सेवा करता है। सारे शेर वही जिनको मिले थे महाप्रभु, सारे हिरण उनको पुनः आलिंगन करते हुए महाप्रभु उस झारखंड जंगल से कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं, और जंगल से अभी पहुंच आते हैं अठार नला, जहां पर बलभद्र भट्टाचार्य को महाप्रभु कहते हैं आप जाओ और सब भक्तों को सूचना दो कि हम लोग आ रहे हैं। और वहां से फिर सुनिया भक्तेर गण ये न पुनरपि जिला, देहे प्राण आइले ये न इंद्रिय उठिला। सुनिया, जब सारे भक्त सुनते हैं हरदास ठाकुर, वहां पर जो उपस्थित सारे वक्रेश्वर पंडित, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये सब जब सुनते हैं भक्तेर गण ये न पुनरपि जिला, जैसे मानो जीवित हो गए हैं, देहे प्राण आइले ये न इंद्रिय उठिला। जब देह माने देह से जब प्राण चला जाता है, और जब प्राण पुनः प्रवेश करता है, तो सारे इंद्रिय जिस प्रकार से शक्तिशाली स्फूर्ति और जागृत हो जाते हैं, उस प्रकार से सारे भक्त मालाएं लेके प्रसाद लेके महाप्रभु के स्वागत के लिए चल पड़ते हैं, और नरेंद्र सरोवर में वहां पर उनका पुनः मिलन हो जाता है। परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, हरिदास ठाकुर, जगदानंद, दामोदर, काशी मिश्रा सारे आते हैं, महाप्रभु हर एक को आलिंगन करते हैं, और सारा मेला भक्तों का अभी जगन्नाथ दर्शन के लिए चला जाता है। जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर बहुत सुंदर नृत्य और कीर्तन होता है, और जो पुजारी होता है वो माला और कुछ प्रसाद वहां पर महाप्रभु को अर्पण करता है। इस प्रकार से कीर्तन से महाप्रभु वहां से बाहर आते हैं, और किसके घर में महाप्रभु रहते हैं हमेशा, पुरी में काशी मिश्र इनके घर में महाप्रभु रहते हैं। और ये जब समाचार और फैलता है, तब रामानंद राय, सर्व भट्टाचार्य और हमारे वाणीनाथ सारे जो है वो महाप्रभु को, वाणीनाथ वो सब जगन्नाथ का प्रसाद लेके जाते हैं। सर्वम भट्टाचार्य आदि सब कहते हैं महाप्रभु को आप हमारे घर प्रसाद के लिए आइए। महाप्रभु कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा थक के आया हूं, अभी मुझे यहीं पर रहने दीजिए, आप जो भी प्रसाद है वो यहां पर लेके आइए। तो सारे भक्त वाणीनाथ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, सर्वम भट्टाचार्य अपने घर से साठी माता ने बनाया हुआ प्रसाद, रामानंद राय सारे भक्त प्रसाद लेके वहां पर जो है वो निवास करते हैं, और वहां पर प्रसाद लेते हैं और कई दिन वहां पर बताते हैं। एत कहिलो प्रभु देखी वृंदावन, पुनः करी लेना ये छे नीलाद्री गमन। इस प्रकार से मैंने आपको सुनाया है, क्या सुनाया है, वृंदावन महाप्रभु ने किस प्रकार से देखा और नीलाद्री वापस आए। इहा ये श्रद्धा करी कर ये श्रवण, अचिरात पाए से ही चैतन्य चरण। जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति अवश्य होगी, ये कविराज गोस्वामी का यहाँ पर जो है वो वर्णन है, आशीर्वाद है। मध्य लीलार करी लो ये दिग्दर्शन, छय वत्सर केला ये छे गमनागमन। इस प्रकार से संपूर्ण मध्य लीला मैंने आपको सुनाई है, जिसमें गमनागमन, जिसमें कितने हैं, छह वत्सर कैला ये छे गमनागमन। महाप्रभु ने 6 साल तक गमनागमन किया। मध्य लीला के 3रे अध्याय से गमनागमन शुरू होता है। तो महाप्रभु पुरी गए, वहां से फिर 7वें अध्याय में दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत यात्रा उनकी 2 साल तक चली थी। वहां से फिर वृंदावन जाने का प्रयास किया, असफल हो गया, पुनः लौट गया, आ गए 16वें अध्याय में। 17वें अध्याय में पुनः जाते हैं, और इस प्रकार से फिर पुनः 18वें अध्याय में वो देख लेते हैं संपूर्ण भ्रमण। उसके पश्चात प्रयाग में आते हैं, वहां कुछ दिन रुकते हैं, रूप को शिक्षा दिया। उसके बाद वाराणसी में आए, 2 महीने तक रुके। इस प्रकार से कुल मिला के जो है वो मध्य लीला होती है 6 साल में संपन्न। शेष अष्टादश वत्सर नीला चले वास, भक्तगण संगे करे नरते न विलास। इस प्रकार से 6 साल हो गए, और जो 18 साल है महाप्रभु अंत में अपने भक्तों के साथ कीर्तन और विलास इसमें जो है वो हमेशा रहे। अभी हम लोग देखते हैं इस अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 25 मध्य लीला का आखिरी अध्याय, और इसके पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, वैष्णवी कृत सन्यासी मुखान काशी निवासिनः सनातनम सुसंस्कृत्य प्रभुर नीलाद्रि आगतम आगमत। तो क्या कहते हैं कि मैंने वैष्णवी कृत सन्यासी, सारे लोगों को वैष्णवी वैष्णव बना दिया, और सन्यासी मुखान मुख्य रूप से जो प्रकाशन सरस्वती उन सन्यासी को जो, और किन किन लोगों को, काशी निवासिनः, काशी के निवासियों को महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया। सनातनम च संस्कृत्य, सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षा प्रदान की, और प्रभुर नीलाद्रिम आगतम, और पुनः महाप्रभु नीलाद्री आ गए, ऐसे मैंने इस अध्याय में वर्णन आपको कराया है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा मध्य लीला यहाँ पर समाप्त होता है, और बहुत सुंदर जो है कविराज गोस्वामी कहते हैं, मध्य लीलार क्रम एबे करी अनुवाद, अनुवाद कैले है कथार आस्वाद। अभी मैं मध्य लीला को आपको जो है वो अनुक्रमणिका यानी परिच्छेद गणन कराऊंगा, सारे पहले अध्याय से लेके अभी तक के जो अध्याय है इनको मैं वर्णन कराऊंगा, इससे क्या होगा कथार आस्वाद। आप केवल उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं भी आपको इसका आस्वादन कर रहा हूँ, हर प्रवचन के पहले पूरे 25 अध्यायों का कैसे श्रृंखला है, वो अभी जो हमारी माला है वो अभी माला पूरी हुई है, उस पूरी माला को हम लोग अभी कविराज गोस्वामी के मुख से सुनेंगे। तो आप तैयार है, बंगाली में ये अनुक्रमणिका है, क्या है बताते हैं सारा वर्णन, आप सुनते रहिए, 2 मिनट लगेंगे लेकिन वर्थ लिसनिंग, इसका आशीर्वाद भी देते हैं, जो सुनता है उसको कृष्ण प्रेम की आस्वादन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रथम परिच्छेदे शेष लीला रसूत्र गण तथि मध्य कोन भागे विस्तार वर्णन, बीच बीच में विस्तार से वर्णन किया है पहले अध्याय में, लेकिन लीला का सूत्र वर्णन शेष लीला का मैंने किया है। द्वितीय परिच्छेदे प्रभुर विलाप वर्णन तथि मध्य नाना भावेर दिग्दर्शन, महाप्रभु किस प्रकार से प्रलाप करते हैं आखिर के 12 सालों में, उसका प्रलाप का वर्णन मैंने दूसरे अध्याय में किया है। तृतीय परिच्छेदे प्रभुर कहिलु सन्यास आचार्य घरे चे करिला विलास, चतुर्थ माधव पुरीर चरित्र आस्वादन गोपाल स्थापन खीर चूरीर वर्णन। मैं जो भी आपका अनुक्रमण बताता था ये पूरे अध्याय से बताता था। श्री प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का शीर्षक दिया है 4th अध्याय का, माधवेंद्र पुरी इनका भक्ति का महत्व, तो माधवेंद्र पुरी का चरित्र आस्वादन भी है, गोपाल की स्थापन और खीर चोरी का वर्णन। तो कविराज गोस्वामी पूर्ण अध्याय में क्या गया है उसको अनुक्रमणिका बनाते हैं। पंचमे साक्षी गोपाल चरित्र वर्णन, नित्यानंद कहे प्रभु करें आस्वादन, तो इसे यह समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा सुनाई थी, महाप्रभु ने सुनी थी। षष्ठे सार्वभौमेर करिला उद्धार, सप्तमे तीर्थ यात्रा वासुदेव निस्तार, अष्टमे रामानंद संवाद विस्तार, आपने सुनीला सर्व सिद्धांतेर सार, नवमे कहिलु दक्षिण तीर्थ भ्रमण, दशमे कहिलु सर्व वैष्णव मिलन, 10th अध्याय के शीर्षक है वैष्णव मिलन, एकादशे श्री मंदिरे बेड़ा संकीर्तन, द्वादशे गुंडीचा मंदिर मार्जन क्षालन, त्रयोदशे रथ आगे प्रभुर नर्तन, चतुर्दशे हेरा पंचमी यात्रा दर्शन, तार मध्य व्रज देवीर भावेर श्रवण, स्वरूप कहिला प्रभु कैला आस्वादन। तो जो हेरा पंचमी 14वां अध्याय है उसमें स्वरूप दामोदर ने जो है वो बहुत सारा लक्ष्मी और गोपियों के भाव का वर्णन किया, वो महाप्रभु ने सुना था। पंचदशे भक्तेर गुण श्री मुखे कहिला, सार्वभौम घरे भिक्षा अमोघ तारिल, षोडशे वृंदावन यात्रा गौड़ देश पथे, पुनः नीला चले आईला नटशाला होते, सप्तदशे वनपते मथुरा गमन, अष्टादशे वृंदावन विहार वर्णन, उनविंशे 19वें अध्याय में उनविंशे मथुरा हैते प्रयाग गमन, तार मध्य श्री रूपेर शक्ति संचारण, विंशति परिच्छेदेर सनातनेर मिलन, तार मध्य भगवानेर स्वरूप वर्णन संबंध ज्ञान, एकविंशे कृष्ण ऐश्वर्य माधुर्य वर्णन, द्वाविंशे द्विविध साधन भक्तिर वर्णन, 2 प्रकार की भक्ति, साधन भक्ति और वैदि भक्ति और भाव रागानुग भक्ति, इसका वर्णन 22वें अध्याय में, त्रयोविंशे प्रेम भक्ति रसेर कथन, चतुर्विंशे आत्मारामा श्लोकार्थ वर्णन, पंचविंशे काशी वासिरे वैष्णव करण, काशी हैते पुनः नीला चले आगमन। तो इस प्रकार से पंचविंशति परिच्छेदे एक कैलु अनुवाद, यहार श्रवणे हय ग्रंथार्थ आस्वाद। तो इस प्रकार से मैंने 25 के 25 अध्यायों का जो है वो अनुवाद किया है, यहार श्रवणे जो इसका श्रवण करता है उसे आस्वाद प्राप्त होता है। तो हमने इन सारे 25 अध्यायों का जो जो श्लोक है ये आते हैं 243 से लेके 262 243 to 262 अध्याय 25 का, इसमें इनका वर्णन किया गया है। तो हमने आपको आदि लीला की भी अनुक्रमणिका भेजी थी, तो अभी जो है आज हमने ये जो मध्य लीला की अनुक्रमणिका है संपूर्ण 25 के 25 अध्याय आपके सामने, ये महाप्रभु के 6 साल ऐसे घूम सकते हैं और इसका चरवण आप लोग कर सकते हैं। और इन सबको हमने एक वर्ड फाइल बनाई है, और जो आप जिस भी फोरम में सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं या फेसबुक में सुन रहे हैं, वहां पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक ऑलरेडी शेयर किया गया है, उसको आप डाउनलोड करके आप इसका आस्वादन जो है वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ और जो चतुश्लोकी भागवत बताया गया है दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33, 34, 35, 36 उन श्लोकों को भी यदि संबंध अभिधेय प्रयोजन, सारे वेदों का सार भागवत है और भागवत का सार यदि केवल ये 4 श्लोक है तो 4 श्लोकों को याद करना तो भक्तों को बनता ही है। तो उसकी एक ऑडियो फाइल हमारे भक्ति वेदांत विद्यापीठ गोवर्धन इको विलेज के डीन गौरांग दर्शन प्रभु, इनके सुमधुर आवाज में उन्होंने 4 श्लोक गाए हैं, तो उसे भी हमने जो है वो उस लिंक में अपलोड करके रखा है। तो अभी ये तो अध्याय हो जाता है, अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु ने यह दक्षिण भ्रमण क्यों किया और सारा भ्रमण भ्रमणा भ्रमण मध्य लीला में क्यों किया। जीवन स्तरिते प्रभु भ्रमिला देशे देशे आपने आस्वादी भक्ति कोरिला प्रकाशे, सारे जीवों का निस्तार करने के लिए देश देश में महाप्रभु भ्रमण किए और भक्ति का प्रकाश किया। और क्या क्या तत्व सुनाए सुनिए 265वां श्लोक, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर, ये 6 तत्वों को महाप्रभु ने जो है वो प्रकाशित किया हुआ है। श्री भागवत तत्व रस करिला प्रचारे कृष्ण तुल्य भागवत जानाइला संसारे, महाप्रभु की कृपा से सारा संसार जान गया कि ये भागवत जो है वो कृष्ण तुल्य है, कृष्णा इज नॉट डिफरेंट देन भागवतम। तो इसलिए श्रीमद भागवत का आस्वादन सारा जग करने लगा। श्री चैतन्य सम आर कृपालु वदान्य भक्त वत्सलना देखी त्रि जगते अन्य, इतने कृपालु है महाप्रभु, तीनों जगत में उनके जैसा कृपालु और कोई मुझे नहीं दिखता है। इसलिए आप क्या करो श्रोतागण, श्रद्धा करी एई लीला सुन भक्तगण इहारे प्रसादे पाईबा चैतन्य चरण, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रद्धा से इसे सुनो, हमें चैतन्य महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद और उनके चरण जरूर प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण लीला अमृत सार तार शत शत धार दश दिके वहे यहाँ यही ते, से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय मनो हमस चराह ताहाते। कृष्ण लीला एक अमृत की सार है और उसकी शत शत धार, उसकी कृष्ण लीला की धाराएं जगह जगह अनग अनग दिशाओं में बह रही है और उसमें से ही चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय। चैतन्य लीला एक अक्षय सरोवर के समान है और मनो हंस चरा यतहाते, हमारे मन रूपी हंस को उस चैतन्य लीला के सरोवर में हमेशा डुबाए रखना चाहिए। और सारे भक्तगण सुन मोरो दैन्य वचन, मेरे वचन को सुनिए। कविराज गोस्वामी सबकी चरण धूली लेते हुए कहते हैं, तोमास बार पद धूली अंगे विभूषण करी किचु मुई करो निवेदन। आप सारे श्रोतागणों की अध्ययन करने वाले लोगों की मैं चरण धूली लेता हूँ और मेरे शरीर को विभूषित करता हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सब लोगों से, कृपया उसे सुने। क्या निवेदन करते हैं कविराज गोस्वामी, देखिए उनकी नम्रता, हम जैसे लोगों के चरण धूली को अपने शरीर के ऊपर धारण करके निवेदन कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति सिद्धांत गण याते प्रफुल्ल पद्मवन तार मधु करी आस्वादन, प्रेम रस कुमुद वने प्रफुल्लित रात्रि दिने ताते चराव मनो भृंग गण। कृष्ण भक्ति जो सिद्धांत है ये मानो एक प्रफुल्लित हुए जंगल के समान है, वन के समान है और उसमें प्रेम के रस के फूल लगे हुए हैं। आप अपने मन को जो है वह एक भौरा बनाओ और उन फूलों का आप आस्वादन कराओ, बाकी कुछ आपको आस्वादन करने की आवश्यकता नहीं है, उस सरोवर में आपके मन को डालो। सही सरोवर गिया हंस चक्र वाक हैया सदा तहा कर हविलास, खंडी बेस कल दुख पाइबा परम सुख अनायासे हबे प्रेमोल्लास। आप क्या कीजिए, आप हंस बन जाइए, आप चक्रवाक पशु पक्षी बन जाइए और चैतन्य लीला के उस सरोवर में अपने आप को डुबा दीजिए। इससे का परिणाम क्या होगा? खंडी बे सकल दुख पाई बे परम सुख, आपके सारे दुख खंडित हो जाएंगे, आपको परम सुख मिल जाएगा। और अनायासे हबे प्रेमोल्लास, बिना कुछ प्रयत्न किए बिना कुछ कष्ट किए आपको प्रेमोल्लास की अनुभूति हो जाएगी। चैतन्य लीला अमृतपुर कृष्ण लीला सुकरपुर दुहे मिली हय सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादे तहां यही आस्वादे से ही जाने माधुर्य प्राचुर्य। चैतन्य लीला एक अमृत के समान है और कृष्ण लीला उसमें कर्पूर डालने के समान है, दोनों का सुमधुरता इतनी बढ़ गई है, यदि साधु और गुरु का प्रसाद लेके कोई इसका आस्वादन करता है तो उसका माधुर्य में वो डूब जाएगा और कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये लीला अमृत विने खाय यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने हासे गाय कर ये नर्तन। यदि खाए अन्न पाने, कोई भक्त है जो भरपूर मात्रा में खा रहा है पी रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी ये लीला अमृत विने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, यदि कोई चैतन्य लीला का आस्वादन नहीं कर रहा है, तीन चार बार भोजन कर रहा है, जल ग्रहण कर रहा है, शरबत पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी उसका जीवन दुर्बल बन के रहेगा यदि कोई चैतन्य लीला का आस्वादन नहीं करेगा। यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, इसका एक बिंदु का भी कोई पान करता है तो उसका तन और मन जो है वो उत्फुल्लित हो जाएगा। हंसेगा कर या नर्तन, वो केवल हंसेगा गाएगा और नर्तन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ए अमृत कर पान यार सम नाही आन चित्ते करी सुदृढ़ विश्वास, अपने चित्त में दृढ़ता से विश्वास कर लो कि यह अमृत का पान है, इसके समान और कुछ नहीं है, क्यों फालतू में दूसरे यहाँ पे गिर रहे हो। ना पड़ कुतर्क गरते अमेध्य कर कश आवरते याते पड़िले होयो सर्वनाश, क्यों आप दूसरे प्रकार के वार्ताओं को सुनने में अपना जीवन विफल कर रहे हो, अपने आप के मन को हंस बना के चैतन्य लीला में डुबाओ, इसके समान और दूसरा कुछ नहीं है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद आरयत श्रोता भक्त गण, तोमा सोबार श्री चरण करी शिरे विभूषण यहा हैते अभिष्ट पुराण। इस प्रकार से मैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत भक्त गण और सारे श्रोता गणों की चरण धूलि को मैं अपने शिरों पर रखते अपने सिर की मैं शोभा बढ़ा रहा हूँ, जिसको चरण धूलि को अपने सर पर रखने से यहाँ होते अभिष्ट पुराण सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। श्री रूप सनातन रघुनाथ जीव चरण शिरे धरी यार करो आश, कृष्ण लीला अमृतान्वित चैतन्य चरितामृत कहे किछु दिन कृष्ण दास। इस प्रकार से सारे गोस्वामियों का आशीर्वाद लेके जो कृष्ण लीला अमृत अन्वित है वो श्री चैतन्य चरितामृत मैं आपको सुना रहा हूँ, आप कृपया इसे सुनिए, ऐसा कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं, हमारी मध्य लीला समाप्त हो जाती है। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है क्योंकि इतना मधुरता से इसका अंत कराया कविराज गोस्वामी ने और खास करके बोलते बोलते सुनते सुनते हमारे इतने दिन निकल गए और मध्य लीला तक हम लोग पहुंच गए। अभी हमारा केवल बच जाता है महाप्रभु का अंत्य लीला। अभी तक जो ये ऐसे पुस्तकें हैं, ये 9 किताबों में चैतन्य चरितामृत है, हमारी 7 किताबें हो गई है, केवल 2 किताबें शेष है जिसमें अंत्य लीला आएगी। तो आप अंत्य लीला सुनने के लिए भी जरूर आइए। कल हम जो है ये अंत्य लीला का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी अभी समय है हमारे प्रश्नोत्तरी का। जो प्रश्न आज का था वो ये था कि जो पहले अध्याय से निम्नलिखित में से कौन से भगवान के प्रकाश विग्रह के उदाहरण हैं? तो जो पहला श्लोक है आदि लीला का, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत् प्रकाशांश तत्शक्ति, तो जो भगवान का प्रकाश होता है कविराज गोस्वामी कहते हैं पहले अध्याय में कि वो 2 प्रकार से होता है, प्रकाश और विलास। तो प्रकाश रूप में जो नीचे उदाहरण है वो कौन है? तो इसका सही आंसर है कि उनके रास नृत्य के दौरान भगवान के जो रूप थे, तो भगवान के जैसे ही दिखने वाले रूप भिन्नता नहीं होती है अंगों में उसे कहते हैं प्रकाश रूप, और जब अंगों में भिन्नता होती है तो उसे कहते हैं विलास रूप। तो ये प्रकाश रूप ये आज का जो है वो सही जवाब है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए भी धन्यवाद, और आशा करते हैं कि अंत्य लीला भी आप सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। अभी महाप्रभु 18 साल तक कहीं पर भ्रमण नहीं करेंगे, और अपने आचरण से अभी सारे भक्तों को शिक्षाएं प्रदान करने वाले हैं। और जैसा कि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमारा जीवन दुर्बल बन जाएगा यदि हम लोग इसे नहीं सुन रहे हैं, तो आपके जीवन को सबल बनाने के लिए जरूर अंत्य लीला भी हमारे साथ आप सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।